ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अवधि में हमने 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के जो नए आयाम देखे उसे उल्लेखनीय माना जा सकता है। साथ ही तीसरे कार्यकाल में भी ठोस उपलब्धियां हमने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उपलब्ध की हैं। आज हम इस कार्यक्रम में महिलाओं के विकास पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। हम आपको यह जानकारी दें कि आज प्रधानमंत्री ने ओडिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महिलाओं के लिए एक योजना का आरंभ किया है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज के अपने विशेषज्ञ अदिति टंडन जी को। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले हम प्रधानमंत्री के आज के ही कार्यक्रम से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने सुभद्रा योजना को कह लें कि इसकी शुरुआत की है, किस तरह की योजना है और किस रूप में महिलाओं को लाभ इसका पहुंचने के आसार लग रहे हैं आपको?
ये एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जो ओडिशा गवर्नमेंट में पहली बार लॉन्च हुई है। ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम है और इसके जो लाभार्थी हैं करीब 1 करोड़ महिलाओं को पहुंचने का इनका लक्ष्य है। और आज प्रधानमंत्री ने जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसको भी रिलीज किया। आज प्रधानमंत्री ने ओडिशा में बहुत और भी कार्यक्रम में बहुत और भी चीजें लॉन्च की और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो ये था कि उन्होंने बैठ के जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसकी बेनिफिशियरीज करीब 26 लाख बेनिफिशियरीज के साथ एंगेजमेंट की। बहुत से बेनिफिशियरीज को घर की चाबियां दी, बहुत सारे बेनिफिशियरीज महिला बेनिफिशियरीज के साथ मिलकर बैठ के बात की और इनफैक्ट उन्होंने ये पूछा कि एक घर मिल जाने से एक महिला की जिंदगी में क्या सुधार या क्या चेंज आता है। मतलब देखने में सुनने में बहुत छोटी सी चीज लगती है पर बहुआयामी जिसको कहते हैं इसका परिपेक्ष है, इसका बहुत बड़ा असर होता है।
जी, यानी एक घर का हो जाना यानी अपना आसमान मुट्ठी में सिमट जाना जहां अपनी दुनिया बसाई जा सकती है। चर्चा को हम थोड़ा सा और विस्तार देना चाहेंगे मैम और समझना चाहेंगे कि जो DNRLM योजना है उसके तहत लगभग 10 करोड़ महिलाओं को जो लाभ पहुंचा है सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से, यह योजना क्या है और किस रूप में महिलाएं इससे जुड़ सकती हैं? पहले तो थोड़ा सा इस योजना के बारे में जानकारी दे दें और महिलाएं किस रूप में, ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं उसकी जानकारी दें।
ये जो पर्टिकुलर योजना है इसका सबसे बड़ा मकसद है कि जो ग्रामीण इलाके में महिलाएं हैं उनको संगठित किस तरीके से किया जाए। तो हर ग्रामीण पंचायत के माध्यम से जो भी पंच है, सरपंच है, उसके माध्यम से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से जुड़ा जा सकता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं भारत में इस वक्त 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, जैसा कि आपने कहा 10 करोड़ महिलाएं ऑलरेडी संगठित हो चुकी हैं। इसमें अलग अलग मल्टी सेक्टोरल कार्यक्रम महिला कर सकती हैं अलग, जैसे इसी के तहत लखपति दीदी का भी एक कार्यक्रम है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। उसी के तहत अभी ऑलरेडी 1 करोड़ महिलाएं जो हैं वो सालाना 1 लाख से ज्यादा आय कमाने लगी हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को संगठित करने के क्षेत्र में प्रधानमंत्री और लखपति दीदी स्कीम के संदर्भ में प्रधानमंत्री की अनाउंसमेंट है कि गोल ये है सरकार का कि इसको 3 करोड़ तक लेके जाया जाए। तो उसको कैसे अचीव किया जाएगा, उसमें कोई एक कार्यक्रम नहीं हो सकता। सरपंचेज और विलेज कमिटीज के माध्यम से सरकारी पैसा जाता है जिसमें महिलाएं जुड़ सकती हैं। उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जैसे कि ड्रोन दीदी का स्कीम है एक, वैसे ही पर्यटन मित्र का स्कीम है। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें महिला अपनी रुचि के हिसाब से जुड़ सकती है और गांव में संगठित होकर ये सब पा सकती है। और इनफैक्ट संगठित होने का ये मतलब भी है कि आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो डिजी बैंकिंग है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की बहुत सारी बेनिफिशियरीज हमने देखा है महिलाएं हैं, लेकिन उनको ये अनुभव कैसे होगा कि बैंक का खाता खुलने का अगर अवेलेबिलिटी या कोई ऐसी स्कीम सरकार की है तो कैसे होगी। तो जब संगठित होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से तो हर आयाम पर, मतलब एक तरफ उनका अर्निंग होगी किसी न किसी माध्यम से, या वो ड्रोन चलाना सीखेंगी या वो पर्यटन गाइड बनना सीखेंगी, जो भी उनकी रुचि है सीखेंगी, वर्मी कम्पोस्ट के एरिया में जाएंगी, जो भी वो करना चाहती हैं गांव में रहकर, और सिमिलरली कि कैसे बैंक का खाता खोला जाए, मुद्रा लोन लेना है तो कैसे लिया जाए, ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के संगठित होने का कि जो आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता लेकिन एक महिला की जिंदगी में बहुत डीपली जिसको कहते हैं असर करता है, उसको बेसिकली सरकारी स्कीम से जोड़ने का माध्यम है।
श्रोताओं, दो तीन महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर आपके सामने आ रहे हैं। यदि यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो गंभीरता से विचार करें कि आपके इर्द गिर्द विशेष रूप से गांवों में जो महिलाएं हैं वह अपने पंचायत के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। श्रोताओं, यहां फिर थोड़ा सा योजना का हम खुलासा करते हैं, ड्रोन योजना। यानी यदि अपनी खेती की जमीन है उसका सर्वे करना है तो बहुत कम लागत में सर्वे किया जा सकता है ड्रोन के माध्यम से, और यह ड्रोन महिलाएं किस तरह चला सकती हैं ये जानकारी हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे। जो आपने पर्यटन गाइड की बात भी कही, पर्यटन मित्र की जो भूमिका बनती है, या कह लें महिलाओं के लिए जो उसमें विभिन्न सारी एक उनके गांव में जो कुछ उपलब्ध है उसका किस रूप में लाभ उठा सकती हैं, अपनी शैक्षिक योग्यता को देखते हुए या अपनी जागरूकता को देखते हुए थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें।
नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है वो केंद्रीय सरकार की एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसमें तीन विभाग जुड़े हुए हैं, एक तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, दूसरा ग्रामीण विकास का जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और तीसरा फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या है, इसमें 15,000 जो स्वयं सहायता समूह हैं पूरे देश में उनको एक एक ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा, और उसमें बड़ा सिंपल सा है ट्रेनिंग का मैकेनिज्म। उसमें यही है कि एक जो सबसे ज्यादा तैयार महिला होगी एक स्वयं सहायता समूह में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन दीदी बनने की, और बेसिकली इस ड्रोन के माध्यम से आप नैनो फर्टिलाइजर स्प्रे कर सकते हैं, तो एक रेंटल की तरह कोई भी किसान जिसकी बहुत बड़ी जमीन है इस्तेमाल कर सकता है ड्रोन स्प्रे करने के लिए, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजर्स को। जो भी ट्रेन ड्रोन दीदी होगी वो ये फर्टिलाइजर देगी, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर का डिमांड ज्यादा होगा, वहां ये स्कीम ज्यादा कामयाब होगी। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान जो है वो ये है कि जो 80% कॉस्ट है ड्रोन की वो सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, और सब्सिडी जो होगी वो 8,00,000 रूपये तक होगी, और एक लोन की फैसिलिटी भी दी जाएगी जो बाकी ड्रोन के कॉस्ट को कवर करेगी। सो ब्रॉडली ये स्ट्रक्चर है इस स्कीम का।
मैम, हम चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देते हुए जो केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया था महिलाओं को, उसको थोड़ा समझना चाहेंगे आपके माध्यम से, और किस रूप में उस धन का उपयोग किया जाता है, किन योजनाओं के लिए वह राशि खर्च की जाती है, ये समझना चाहेंगे।
देखिए, सबसे बड़ा जो प्रावधान बजट में किया गया है वो तो हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण और अर्बन आवास योजना
जी,
3 करोड़ घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें से 1 करोड़ घर शहरी एरियाज में होंगे और 2 करोड़ घर जो होंगे वो होंगे रूरल एरियाज में
जी।
और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है यही सिक्योरिटी कि एक घर आपको मिल जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जिसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी महिलाओं की यही रहती है कि आप अपने परिवार को सहेज के कैसे रखें, क्योंकि एक घर होता है जब तो एक साइकोलॉजिकल आप सेटिस्फेक्शन के साथ जिंदगी आगे व्यतीत कर सकते हैं। और अभी तक जैसा कि हम जानते हैं कि जो 10 साल में 4 करोड़ घर ऐसे बन चुके हैं और 3 करोड़ और का लक्ष्य है। सिमिलरली अगर आप बजट में और प्रावधान देखें तो बजट में बहुत बड़ा प्रावधान पीएम सूर्य घर योजना के लिए रखा गया है। ये मनोज जी हम सब सुन रहे हैं बहुत दिनों से कि पीएम सूर्य घर योजना में आप अगर सोलर पैनल्स अपने घर के ऊपर लगा लें तो प्रधानमंत्री ने भी बहुत बार कहा है कि ये इतनी क्षमता है इस स्कीम में कि आपका घर का जो बिजली का बिल है वो 0 हो सकता है। तो ये एक डायरेक्ट तरीके से महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है सबसे ज्यादा परेशान घर की महिला को मातृशक्ति को ही करती है।
सही बात।
तो ये डायरेक्ट बेनिफिट के स्कीम्स नहीं है महिलाओं के लिए, लेकिन इनके अप्रत्यक्ष देखिए कितने बेनिफिट्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं को हेल्प करते हुए जाएंगे। और जो सबसे बड़ा टैक्स रिलीफ अभी रिसेंटली दिया गया था, जो लास्ट बजट आपने बजट का जिक्र किया कि 7,00,000 तक के लिए कोई भी टैक्स नहीं है, वो हटा दिया गया था, और सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं वो 17,500 रूपये के करीब टैक्सेस में भी बचा सकते हैं। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं ये एक कहीं ना कहीं महिलाओं को छूके जाती हैं। और लखपति दीदी स्कीम का बहुत
जी,
बड़ा टारगेट था, हमने पहले भी कहा कि 3 करोड़ का टारगेट है, 1 करोड़ महिलाएं ऑलरेडी 1,00,000 से ऊपर अपना इनकम कमा रही हैं भारतवर्ष में आज की डेट में, और इसको 3 करोड़ करने का एक लक्ष्य है जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से और नई नई स्कीम्स के माध्यम से ड्रोन दीदी, पर्यटन दीदी, वो लक्ष्य है।
यहाँ पर यानी थोड़ा सा हम श्रोताओं के नजरिए से, विशेष रूप से महिलाओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि लखपति दीदी योजना, हमने नाम सुना लेकिन ऐसे मान के चलें कि जिसको कोई जानकारी नहीं है, तो इस योजना का लाभ हमारी बहन या हमारी बेटियां या जो भी, वो कैसे इसका लाभ उठा सकती हैं लखपति दीदी योजना का?
जो लखपति दीदी योजना है उसका कोई लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी नहीं है। एक ही चीज है कि लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समुदाय का सदस्य होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप जहां पर भी हैं, जिस भी गांव में हैं, जिस भी शहरी क्षेत्र में हैं, सबसे पहले तो आप एक स्वयं सेवक समूह से जुड़िए और उसमें जैसा कि मैंने कहा अलग अलग
विषय हो सकते हैं, क्षेत्र हो सकते हैं जहां आपकी प्रतिभा का उपयोग हो सकता है, घरेलू सामान यदि आप बना सकती हैं, कलाकृति कोई बना सकती हैं, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह जो है उसके साथ जुड़ाव आपका होना चाहिए। मैम यहां पर हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे और जो मुद्रा लोन है उसकी जो सीमा बढ़ाई गई है 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है, उसमें ये समझना चाहेंगे कि महिला उद्यमियों को किस रूप में इसका लाभ मिल रहा है और कितना लोन वो उठा पा रही हैं, उनकी लाभप्रदता कितनी बढ़ जाएगी इस ऋण सीमा बढ़ने से।
देखिए अभी तक का जो डेटा कलेक्ट हुआ है, 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तो 2015 से लेकर 2023 तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो हमें ये बताता है मनोज जी कि करीब 30 करोड़ वर्थ के लोन्स डिसबर्स किए गए मुद्रा लोन के तहत, जिसमें से 70% महिलाओं ने अवेल किए। अब ये कौन महिलाएं हैं? ये वो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपना बैंक का खाता खोल चुकी हैं। बैंक का खाता खोलने की वजह से आपको लोन भी मिलता है, आप एक डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से जुड़ती हैं। तो आपने जैसे पूछा कि क्या लाभ है, लाभ सबसे बड़ा ये है कि आपको सिर्फ 18 साल का होना जरूरी है, वयस्क होना जरूरी है, इतना ही एलिजिबिलिटी है और उसमें आप कुछ भी कर सकती हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पापड़ बना सकती हैं, आप पिकल इंडस्ट्री में हो सकती हैं, आप ट्रेडर हो सकती हैं, आप कोई भी अपना छोटा उद्यम खोलने के लिए आपको मुद्रा लोन अवेलेबल होगा। और न सिर्फ मुद्रा लोन के तहत महिलाएं लोन्स ले रही हैं, एक जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है सरकार की, उसमें भी जो करीब 2 लाख लोन्स जो सैंक्शन हुए हैं उसमें से भी 84% महिलाओं ने अवेल किए हैं।
जी, महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो सकता है और घना विकास हो सकता है, यह बता रही हैं हमारी विशेषज्ञ अदिति जी। आवश्यकता इस बात की है कि हम अवसर को पहचानें और विशेष रूप से महिलाएं अपने आप को मजबूत समझें, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और अपने निकट के सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर अपनी क्षमता प्रतिभा के अनुरूप अपने कारोबार को, अपने व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता है। और कोई बात आप कहना चाहें हमारे श्रोताओं से, महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो सके, किस रूप में उनको प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत संक्षिप्त में?
बस मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अभी ऑफ लेट एक बहुत मानसिकता बदल रही है। पहला ये सोचा जाता था कि महिलाएं पैसिव, जिसको कहते हैं ना, बेनिफिशरीज हैं हर स्कीम की, कि आपके घर में बैठे आप एक स्कीम का बेनिफिट ले लें। लेकिन अब हम भूल गए उस बात का जिक्र करना कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पास हुआ है, जिससे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की बढ़ने वाली है। सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होगी और फिर जो भी वो रिजर्वेशंस होंगी महिलाओं के लिए, तो अब महिलाएं जो हैं वो आर्किटेक्ट्स बन रही हैं, देश को संवारने में अपना रोल अदा करेंगी, ना सिर्फ एक पैसिव बेनिफिशियरी होंगी घर में बैठ के उनको आप स्कीम्स देते जाएं, डोल्स देते जाएं, नहीं, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आने वाले वक्त में होने वाला है, स्पेशली जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लागू हो जाएगा।
जी जी, श्रोताओं बहुत उपयोगी और सार्थक जानकारियां हमें मैम से मिली हैं, आप सभी की ओर से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।